जय माँ। आज योग समन्वय भाग दो चैप्टर 14, चौदवां चैप्टर पार्ट टू योग ऑफ इंटीग्रल नॉलेज। और इसमें हम लोग जो विषय है बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है वैसे तो, द पैसिव एंड द एक्टिव ब्राह्मण। अब इसका वास्तव में कोई प्रॉपर हिंदी अनुवाद नहीं है, क्योंकि हिंदी लिटरल अनुवाद तो है, अनुवाद होगा निष्क्रिय एवं सक्रिय ब्राह्मण। तो अगर आप ट्रेडिशनल वेदांत में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। यहाँ निर्गुण सगुण की बात नहीं हो रही है, यहाँ साकार निराकार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर निष्क्रिय और सक्रिय की बात हो रही है। तो अब नॉर्मली ब्रह्म को माना ही गया है निष्क्रिय, निष्क्रिय इन द सेंस कि ब्रह्म के अंदर कोई क्रिया नहीं होती, वो एक स्टेबल बेसिस है, वो अपने आप में अक्षर है और स्थिर है, सदैव स्थिर है। वो नित्य जो हो रहा है वो प्रकृति है, यानी काली का नित्य हो रहा है शिव के वक्षस्थल पे। तो ब्रह्म बाय डेफिनेशन ये माना गया कि वो तो निष्क्रिय ही है, ब्रह्म के अंदर कोई क्रिया नहीं है। जो भी वो पुरुष है जो केवल दृष्टा है, और जो क्रिया है गति है वो प्रकृति के अंदर है, तो प्रकृति तो ब्रह्म नहीं है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक डिवीजन रहा है भारतीय मानसिकता में, जिसके परिणाम अभी तक हम भुगत रहे हैं और शायद हम सीखे नहीं हैं अभी तक, क्योंकि बाद में स्वीकारा कि नहीं देवी हैं, डिवाइन मदर हैं, शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को भी अंततः ब्रह्म में मर्ज करने के लिए वो द्वार खोलती हैं, आपको ले जाती हैं और द्वार खोलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक, ये भारत में ही नहीं सभी जगह, लेकिन भारत में चूंकि अध्यात्म बहुत अधिक डेवलप्ड है तो वहाँ भी ये रिकनसाइल नहीं हुआ है। इसका जो क्लोजेस्ट रिकनसाइल हुआ है, जिसको हम कहें कि समन्वय होने का चेष्टा की गई है, एक तंत्र में और एक गीता में। तो तंत्र में जो रिकनसाइल या समन्वय करने की चेष्टा की गई, उसमें वो शक्ति प्रधान है इसलिए चेष्टा की गई, और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए, लेकिन अंत में उन्होंने पुरुष की ही बात की जिसमें शक्ति आपके द्वार खोल देती है। गीता में श्री कृष्ण रिकनसाइल करते हैं पहली बार, वेदांत में एक बहुत ही स्पष्ट रूप से रिकनसिलिएशन मिलता है जब श्री कृष्ण कहते हैं परा प्रकृति, मेरी ही प्रकृति है। तो जैसे वो कहते हैं मेरी ही प्रकृति, मेरी ही माया, तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि दोनों में भेद करना ये उचित नहीं है, उन्हीं की प्रकृति है, उन्हीं की माया है। तो इसी सत्य को श्री अरविंद विस्तार से ले जाते हैं। वो ब्राह्मण और माया यहाँ पे शब्द नहीं उपयोग कर रहे, क्योंकि माया शब्द में बहुत सारे अर्थ अंतर्निहित हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें हमारी मानसिकता में उभरती हैं। तो ब्रह्म का ही सक्रिय और निष्क्रिय और सक्रिय स्वरूप उसकी बात हो रही है। तो सक्रिय यानी गति और निष्क्रिय यानी जब वो बिल्कुल एक दृष्टा के रूप में है। तो ये दोनों चीज़ें श्री अरविंद अपने आध्यात्मिक अनुभव से कह रहे हैं, वो केवल एक फिलोसफिकल चीज़ नहीं है। हाल में मैं एक वीडियो सुन रहा था, श्री रामकृष्ण आश्रम के बड़े नामी स्वामी हैं, रिस्पेक्टेड हैं, परंतु अंत में वही हो जाती है कि जगत मिथ्या ये मानने से लाभ क्या होता है। तो उनका एक छोटा सा वीडियो था कि क्लिपिंग होगी, तो लाभ उन्होंने बताया दो, एक तो ये कि हम वो सांप नहीं, सांप की जगह कुछ और है, तो रस्सी है जो एक टिपिकल उदाहरण दिया जाता है, तो हम उसी जगह पर ढूंढते हैं जहाँ पर हम संसार को ढूंढ रहे थे, वहीं पर ब्रह्म भी स्थित है, तो हम ब्रह्म को देखें ना कि संसार को। दूसरा कि अगर हम संसार को मिथ्या मानते हैं तो हम उसमें एक प्रकार से लिप्त नहीं होते, उसमें आसक्त नहीं होते, और हम ब्रह्म की ओर जो रियलिटी है, ट्रूथ है, उसकी ओर जाते हैं, और ये चीज़ हमको उतना प्रभावित नहीं करती, हमको डिस्टर्ब नहीं करती। अगर होती भी है तो जैसे एक सिनेमा देख रहे हो, तो सिनेमा देख रहे हो तो आपको कोई सीन आया बड़ा बुरा लगा, आपको आंसू आ रहे हैं, तो बगल वाला क्या कहता है, भाई सच में नहीं हो रहा है, इतना भी रोने की आवश्यकता नहीं है। तो एक सेंस में ये आपको बफर करता है पीछे कि ठीक है, ये हो रही है जो चीज़, ये प्रकृति है, तो मैं इससे इतना आइडेंटिफाई करने की, इससे व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वाभाविक है, जैसी पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की है, इसमें बहुत सारे प्रश्न अनसुलझे रह जाते हैं कि ये कहाँ से आई, क्यों आई, इसका प्रयोजन क्या है, क्यों इसका अध्यारोपण हो रहा है ब्रह्म के ऊपर, इत्यादि इत्यादि। आज हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक अलग विषय है, उसकी बात हो चुकी है पहले अन्य वार्ताओं में। आज केवल ये कि अनुभव की भूमि पर क्या होता है। अनुभव की भूमि पर अब अगर हम ढूंढने निकलते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी वो सत्य क्या है, तो एक चीज तो स्पष्ट है कि अपीयरेंसेस में नहीं है। अगर हम अपीयरेंसेस को ही सत्य मान लें, कम से कम अल्टीमेट सत्य तो हम नहीं मान सकते। हमको ढूंढना है कि क्या है उसके पीछे, कोई अल्टीमेट रियलिटी क्या है। ये नहीं कि हम कहते हैं कि ये असत्य है या मिथ्या है, लेकिन उसके पीछे सत्य क्या है। जैसे एक वैज्ञानिक भी करता है कि ये बाहर दिख रहा है सॉलिड ऑब्जेक्ट, इसके भीतर क्या है। तो जब हम उससे भीतर जाते हैं, और दो तरह से भीतर जा सकते हैं, या तो बाहर की वस्तुओं के भीतर या अपने ही भीतर, तो अपने भीतर आसान रहता है क्योंकि हम एक्सेसिबल हैं हर समय। तो अगर हम अपने भीतर जाते हैं तो धीरे 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 हम पूरी प्रकृति की गति से डिटैच होकर एक दृष्टा बन जाते हैं। दृष्टा ये एक साधारण अनुभव है जो कई लोग को बहुत सरलता से मिल जाता है। तो अब क्या हो गया, अब एक है जो गति चल रही है और दूसरा है दृष्टा। तो दृष्टा और ये जो गति चल रही है, इन दोनों में क्या है, ये दृष्टा कैसे अनुभव करता है, वो जो गति चल रही है वो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। जैसे आप एक सिनेमा देख रहे हो, तो वो चलचित्र है, वहाँ पर सारे दृश्य आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को स्पर्श करते हैं, आपके मन के ऊपर विचारों पे आते हैं, तो वो आप पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो एक होता है कि रिफ्लेक्शन। तो अगर यदि पुरुष अपने आप को उससे भी अलग कर ले, वो जैसे आप समझिए आप पिक्चर देख रहे हो और अपने को आपने काट लिया उस पिक्चर से अंदर, ये तो बहुत ईजी है करना, तो फिर क्या होता है, पिक्चर तो चल रही है पर आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तो एक है जिसमें दृष्टा पूरी तरह प्रकृति के अंदर जो गति चल रही है वो दृष्टा की चेतना में रिफ्लेक्ट हो रही है। यही स्टोरी कहानी है वास्तव में नार्सिसस और गोल्डमोर की, लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन अलग ढंग से दिया गया। किंतु वो दृष्टा जैसे एक वो कही गई, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो अपने ही छवि को नदी के अंदर रिफ्लेक्ट होता देखता है, तो देखते देखते अपने ही छवि से सम्मोहित हो जाता है, और इतना सम्मोहित हो जाता है कि वो ना भोजन को उठता है ना किसी और क्रिया के लिए उठता है, और अंत में वो उसी में अपने प्राण त्याग दे, मतलब इस हद तक वो सम्मोहन हो जाता है अपनी ही छवि से। तो प्रकृति में जो पुरुष है अपनी ही छवि देख रहा है अलग अलग तरह से, तो वो रियल नहीं है क्योंकि उसकी वास्तव में कोई छवि नहीं है, उसका ना रूप है ना नाम है। लेकिन जैसे तरंगे होती हैं उसके अंदर सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश, ये उपमा दी जाती है कि अगर चंद्रमा देखिए, अगर आप समुद्र के अंदर देखते हो तो उसमें दिखता है ना पैटर्न्स बन रहे हैं, फॉर्म्स बन रहे हैं, वो फॉर्म्स नहीं है, तो प्रकाश है केवल। लेकिन वो प्रकाश एक और वो जड़ प्रकृति के अंदर नाम रूप इत्यादि प्रकट करता है, वो वास्तविक नहीं है लेकिन है एक स्वप्न की तरह। तो इस प्रकार से जब दृष्टा नेक्स्ट लेवल लेता है योग का, सांख्य योग से है, यही चीज वेदांत योग में, ज्ञान योग में, ट्रेडिशनल ज्ञान योग में यही चीज है। तो वो कहता है नहीं, ये नाम रूप जो मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे, परिलक्षित हो रहे, मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो केवल दृष्टा हूं, इनका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तब वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है जहां वो उसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। तो जब कट ऑफ हो जाता है तो क्या ये चीजें बंद हो जाती, नहीं, वो चलती रहती हैं, लेकिन अब वो आपको किसी प्रकार से कोई स्पर्श नहीं कर पा रही है। फिर अब यहां से अगर आप चाहो तो एक और स्टेप ले सकते हो कि अब जो दृष्टा है और जो दृश्य है, वर्ल्ड एंड सेल्फ, दृष्टा भी एक सेल्फ है, सेल्फ ऑफ विटनेस सेल्फ है, अब वो उन दोनों से परे चला जाता है विड्रॉ करके। उसको कहा गया अज्ञेय, अनोएबल। अनोएबल इज व्हेन द विटनेस टर्न्स टुवर्ड्स दैट वन सेल्फ, तो वो माइंड का जो हाईएस्ट स्टेट है वो विटनेस है। अब जब वो उससे भी विड्रॉ कर लेता है तो वो अज्ञेय में चला जाता है। उसको अज्ञेय क्यों कहा गया है, अनोएबल, क्योंकि माइंड के लिए वो अनोएबल है, माइंड के किसी वर्णन से, किसी डेफिनेशन से, किसी डिस्क्रिप्शन में वो फिट नहीं बैठता। अज्ञेय का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, अज्ञेय का मतलब ये है कि माइंड उसको नहीं जान सकता। क्यों, माइंड किसी भी चीज को जानता है तो कहीं ना कहीं वो इमीडिएटली उसको नाम और रूप इन्हीं के द्वारा वो जानता है, और यदि वो नाम रूप के बंधन से वो मुक्त है वो अवस्था, तो माइंड वहां पे जाके जिसको कहा गया चक्कर खा जाता है और चक्कर खा के चक्कर घिन्नी बन जाता है, मतलब या तो वो उसमें पूरी तरह खो जाता है, इम्पर्सनल पूरी तरह, क्योंकि उसको अब वो नहीं समझ पा रहा है कि मैं कहां आ गया हूं, तो वो समझने का प्रयास बंद करके पूरी तरह स्टिल हो जाता है, या फिर वो सी सॉ करता है, उसमें रहता है, या फिर वापस प्रकृति की गति में आता है। तो प्रकृति की गति में जब आता है तो उसको डर रहता है, और होता भी है कि वो वापस प्रकृति के जाल में आ जाए। ये योगी इस अवस्था से गुजरते हैं। तो कई योगी तो फिर इसको इस तरह से लेते हैं कि ठीक है, प्रकृति में जो हो रहा है होने दो, हम इससे कंसर्न नहीं होंगे। इसी को शंकराचार्य चार प्रकार की प्रकृति की अवस्थाएं बताते हैं, जब आप सेल्फ को रियलाइज करते हैं। तो उसमें ऐसी ऐसी अवस्थाएं, जड़वत, आप जड़ जैसे बन जाते हो, या बालवत, बच्चे जैसे आपका व्यवहार हो जाता है, या उन्मत्तवत, पागल जैसे हो जाते हो, या पिशाचवत, लाइक ए घाउल, मतलब आपके क्रिया का कोई भी ओढ़ छोड़ लेना देना नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति उससे मुक्त है, यानी सेल्फ फ्री है आपका, आपने ये रियलाइज कर लिया है, लेकिन प्रकृति अपनी गति से चलती जा रही है। लेकिन इस ये नेचुरली ये बहुत संतोषजनक तो नहीं है अवस्था। तो कुछ योगी क्या करते हैं, फिर वो प्रकृति की गतियों को मिनिमाइज कर देते हैं, यानी कि हम केवल उतना काम करेंगे जितना हमारी इंद्रियों के लिए आवश्यक है। तो उतना कॉन्टैक्ट रखेंगे, भोजन आवश्यक है, नित्य कर्म आवश्यक है, थोड़ी बहुत जो उनकी पठन पाठन जो भी अगर मिनिमम है उतना काम करते हैं, बाकी समय वो प्रकृति से अलग रहते हैं। इससे भी आगे की बात श्री कृष्ण बताते हैं, श्री कृष्ण निर्लिप्तता की बात बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लेकिन इस सेल्फ को रियलाइज करके ये संभव है कि वहीं से हम वापस इस प्रकृति को देखें, और हम ये पाएं कि केवल ये नहीं कि ये सेल्फ इससे अलग है, किंतु ये सब कुछ जो है वो उसी एक सेल्फ का प्रसारण है। जैसे आप इसको ऐसे उदाहरण ले लें, श्री अरविंद सावित्री में कहते हैं, All here that seems to be its lonely self are figures of the soul transcendent one. Meaning thereby कि एक और यह है कि यह टेबल है, ये कुर्सी है, कैमरा है, ये व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। अब आप अंत में इसके पीछे अगर मेटीरियल साइंस के लेवल पे जाएं तो क्या कहेंगे, मेटल एनर्जी है। ये बड़ी अद्भुत है, इवन आप देखेंगे ना DNA का, उसको देखे कोई भी व्यक्ति तो उसको लगे भगवान तो निश्चित रूप से है। मतलब अब उसकी जो बनावट, आपको पता है सबसे पहली बात क्या कही थी वाटसन ऑन क्रिक ने, उन्हें बड़ी वर्षों शोध किया, मैं भूल गया हूँ, 5 वर्ष शायद शोध कर रहे थे कि क्या है स्ट्रक्चर। जब उन्होंने डिस्कवर किया तो सर फ्रांसिस क्रिक कहते हैं, बाहर जाके, बाहर लोग दारू वारू पी रहे थे लॉन ऑन में, कहते हैं मैंने खोज लिया, ये इतना सुंदर है कि ये निश्चित रूप से सही होगा। और वो सही था। डबल हेलिक्स उसके बीच में माइनो एसिड, बाद में उन्होंने और उसको डिस्कवर किया, ये इतना सुंदर है, कहीं ना कहीं उनको सौंदर्य का दर्शन हो गया। तो अब देखिए सबके अंदर वही चीज है एक तरह से, लेकिन क्या वो कनेक्टेड नहीं है इन सबसे, सब से कनेक्टेड है। तो उस तरह से, उसी प्रकार से एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि वो एक सेल्फ कैसे ये सब बन गया है। तो यानी अब 3 प्रकार के रियलाइजेशन हो गए, एक वो सेल्फ जो इससे अलग है, जो अपने आप में मगन है, मस्त है, इस प्रकृति से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, वही एक सेल्फ ये सारे भिन्न भिन्न सेल्फ बन गया है, सबका स्व बन गया है। और तीसरा कि केवल स्व नहीं बना है, वो उस स्व से ही ये सब कुछ जो हम संसार में देख रहे हैं वो बन गया है। और इस ये DNA का उदाहरण बहुत सटीक है इसमें, हर चीज का बायोलॉजिकल लेवल पर, अगर आप क्वांटम फिजिक्स को छोड़ दें, बायोलॉजिकल लेवल पे जितने भी जीव हैं, जीवाणु, उसके अंदर जो मुख्य चीज है वो ये DNA है। अब DNA के अगर आप जाएंगे मूल रूप से, तो उसकी सबके अंदर DNA की मूल रूप एक ही है, एक ही DNA का रूप है। वो डबल हेलिक्स है और उसमें सेम एसिड है, और बीच में उनको जो जोड़ती है सीढ़ी, वो 20 अमाइनो एसिड है। मतलब यही आपको पूरे मैं उसके बारीकी में नहीं जा रहा हूँ, किंतु बैक्टीरिया से लेके मनुष्य तक यही मिलेगा। लेकिन उसी के अंदर रहस्य भी छिपा हुआ है, मनुष्य बनने का या फंगस बनने का। फंगस और मनुष्य के DNA में 2% का अंतर है, ईस्ट और मनुष्य में। अब देखिए चमत्कार, वही DNA ये बना है, वही DNA वो बना है। क्यों? हल्का सा, यानी ये नहीं हम कह सकते कि सब DNA तो डिसकनेक्टेड है, नहीं, अपने ही अंदर थोड़ा सा वो शोभ लाके बिल्कुल एक अलग चीज बन जाती है। तो उसी प्रकार से सर्वभूतानी, संसार में जो कुछ भी बना है वो एक से ही बना है, और एक ही यह सब बन गया है। तो ये एक प्रकार से एक उदाहरण है जानने के लिए। अब ये तो ठीक है, यहां से अब दूसरी कहानी शुरू होती है कि ये जो प्रकृति है ये कहां से है। अब जब हम सेल्फ को रियलाइज करते हैं तो ये कहां से चलती है। तो सेल्फ अगर विड्रॉ भी कर लेता है तो क्या ये प्रकृति बंद हो जाएगी? नहीं, ये चलती है, जड़ प्रकृति। क्या जड़ प्रकृति के अंदर इंटेलिजेंट मूवमेंट है? बिल्कुल है। तो उसको कह दिया कि भाई पुरुष का रिफ्लेक्शन है, तो पुरुष अगर विड्रॉ कर लेगा, आपका मन पूरा शांत हो गया, अब यहां कहानी थोड़ी ट्विस्ट आता है उसमें। तो क्या मन आपका पूरा स्टिल हो जाए, स्थिर हो जाए, ब्रह्म में समा जाए, तो क्या मानसिक क्रिया संभव है? शरीर और प्राण को तो लोग बोल देते हैं कि जड़ प्रकृति है। शेरविंद कहते हैं बिल्कुल संभव है, और ये तो अनुभव है। दो प्रकार के अनुभव हैं इसमें। एक, कोई दूसरा व्यक्ति हिप्नोसिस की अवस्था में, आपका मन निष्क्रिय है लेकिन दूसरे की विल और बुद्धि आपको कंट्रोल कर रही है, ये तो जानी हुई चीज है। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका मन निष्क्रिय और वह दूसरा कोई व्यक्ति ना हो, तो भी ऐसे फिनोमिना हैं जहां आप ना केवल पोइट्री लिख सकते हो, ना केवल लिख सकते हो, चलो वो तो एक ऑटोमेटिक राइटिंग विश्व चेतना से आ गई, किंतु अति चेतन अवस्था से आपकी लेखनी पूरी तरह वो अति चेतनता उसमें समा सकती है। तो ये कहां से आया? तो अब इस सोर्स को अगर हम पकड़ेंगे कि अति चेतन ने कैसे मन का उपयोग किया इंस्ट्रूमेंट के रूप में, कैसे हाथ को उपयोग किया और या टाइपराइटर को उपयोग किया या आजकल सेलफोन का उपयोग किया, और वो अति चेतन ने अपने आप को पूरी इस माइंड लाइफ बॉडी के साथ अभिव्यक्त किया, तो अब आता है वहां से कि ये तो वहीं से निकला, ये एक्टिविटी तो वहीं से निकली, क्योंकि वो ल्यूमिनस है, वो निर्दोष है, उसके अंदर आप कोई लूपहोल नहीं है, लॉजिकल है, लेकिन आपका माइंड स्टिल है। श्री अरविंद का अपना अनुभव है। तो वो कहां से आई? वो भी ब्रह्म से आई। यानी ब्रह्म केवल निष्क्रिय नहीं है, उसके अंदर सक्रिय गतिशील होने की भी स्पंदन, वो भी ब्रह्म के अंदर है। तो अब उसमें भी दो लेवल होते हैं अनुभव के। एक, जब हम निष्क्रिय ब्रह्म का अनुभव करते हैं, जब पूरी तरह शांत, बिल्कुल शांत, मतलब शांत वो शांत जो शांति के परे शांति है, वो एक। दूसरा, जब सक्रिय होते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी, आनंद, जिसमें कभी कभी इतना रम सकता है व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ही लूज कर दे और उसमें चला जाए। ये सब अवस्थाएं हैं योग की, परंतु थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको देख सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है और उसमें बड़ा मगन है, या कोई विचार में मगन है और अचानक वो बहुत शांति अनुभव कर रहा है अपने अंदर और उसमें लिख भी रहा है, अचानक कोई आके उसको डिस्टर्ब करे, मान लो उसका हाथ पकड़ ले या कोई चीज उसको लगे, तो उसका एक प्रतिक्रिया होगी। तो अब वहां पे क्या हुआ, वो एक लेवल नीचे आ गया, वो प्रतिक्रिया जो हुई वो मैकेनिकल जड़ प्रकृति की क्रिया हुई। तो ये एक अनुभव है, यानी दो अलग अलग हो गए, एक तो निष्क्रिय ब्रह्म और दूसरा सक्रिय ब्रह्म। आप दोनों में अल्टरनेट कर सकते हो, या तो शांति या आनंद। अब अल्टीमेट अवस्था पर श्री अरविंद देते हैं, जहां किसी भी अवस्था में आप कितने भी सक्रिय, इवन जो निम्नतम चीज हो रही है, भोजन, खेल, किसी भी अवस्था में आप उस परम शांति को लूज नहीं करते हो, वो सदैव आपके साथ बनी रहती है, दोनों साथ साथ। तो ये सारी वास्तव में चेतना की अवस्थाएं हैं, योग की यात्रा में अनुभव हैं, जिसको श्री अरविंद यहां पर प्रकट कर रहे हैं। और ये वो चीजें प्रकट कर रहे हैं जो आज तक किसी योग की पुस्तक में नहीं प्रकट की गई हैं। बहुत जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है, पढ़ी भी हैं, उन पर बहुत कुछ मनन भी किया है, और आई विल बी हैप्पी इफ समबडी कैन से, लोगों ने अभिनव गुप्त की बात की कि नहीं नहीं ये तो पास में आते हैं, मैंने उनको पढ़ा, फिर वशिष्ठ अद्वैत की बात की, वशिष्ठ अद्वैत मेरी पढ़ी हुई थी, ऐसा नहीं है ये, आप द्वैत अद्वैत नहीं, इट डज नॉट, दिस इज नॉट देयर इन एनी अनुभव एक्सपीरियंस, किंतु यही सत्य होना चाहिए, ये आपका इंट्यूशन कहती है कि आप दोनों को अलग कैसे कर सकते हो। और ये जब हम पकड़ लेंगे तो संसार और भगवान को जोड़ने की वो कड़ी मिल जाएगी। गीता में हिंटेड है, लेकिन यहाँ पे उस श्री अरविंद उसको पूरा डेवलप कर रहे हैं। चैप्टर 14 द पैसिव एंड द एक्टिव ब्राह्मण. तो यहां पे दो लाइंस ऑफ इवोल्यूशन बताते हैं योग की. एक है जहां आप हर लेवल पर उठते हो, जैसे जिसको लाइव डिवाइन में एसेंट एंड इंटीग्रेशन, हायर माइंड पे उठे. अब आपने वहां से सेल्फ को भी समझा, संसार को भी समझा. होता है ना, जब आप हायर माइंड से देखते हो तो सारी चीजें सिंबॉलिक दिखाई देने लगती हैं. सेल्फ भी फिर एक अलग दृष्टि हो जाती है उसकी. आपने इंट्यूटिव माइंड पे गए तो वैसे ही सारी चीजों के अंदर का सत्य प्रकट होने लगता है और आपको सेल्फ का भी एक अलग चित्रण होता है. तो ये वैदिक ऋषियों का योग है. तो यहां उसकी बात कर रहे हैं. टू डिफरेंट लाइन्स ऑफ हिज सेल्फ डेवलपमेंट ही मे इवॉल्व. ही कौन? साधक, जो मेंटल बीइंग है. हम लोग साधक की बात नहीं कर रहे, जो मेंटल बीइंग है अगर वो आगे बढ़े. ही मे इवॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम प्लेन टू प्लेन ऑफ हिज ओन बीइंग एंड एम्ब्रेस ऑन ईच सक्सेसिवली हिज वननेस विद द वर्ल्ड एंड विथ सच्चिदानंद रियलाइज एज द पुरुष एंड प्रकृति कॉन्सियस सोल एंड नेचर सोल ऑफ दैट प्लेन. और ये आमतौर पर ये बड़ा सिंपल है इसको देखना कि हर लेवल, जैसे आप दसवीं क्लास में जाते हो तो वही चीज़ आप दूसरे ढंग से, खुद को भी आप अलग ढंग से समझते हो और संसार को भी अलग ढंग से समझते हो. ये एक प्रोसेस है जो चलती रहती है. 15 साल का बच्चा खुद को भी अलग समझता है अलग ढंग से अब, और संसार को और जो कुछ उसने अनुभव किया था 5 साल में उसको अलग ढंग से समझता है. तो ये नेचर की प्रोसेस है. तो उस वैदिक ऋषियों ने इसी का अनुकरण किया है. ही मे, दैट इज टू से, टेकिंग इन टू हिमसेल्फ द एक्शन ऑफ द लोअर ग्रेड्स ऑफ बींग एज ही असेंड्स. लेकिन नेचुरली ये लंबी प्रोसेस है. वैदिक काल के लिए ठीक थी, जहाँ 1000 वर्ष तो आम बात थी. एक कहानी जिसे कहते हैं, वो वैदिक ऋषि, उनका वो किसी अप्सरा के साथ रहने लगे तो 1000 वर्ष तक वो रहने लगे. फिर उनको अचानक ध्यान आया कि अरे अरे, मैं तो योग यात्रा में था. आप सोचिए, अब 1000 वर्ष तक, हु कैन अफोर्ड टूडे. तो वो एक समय के लिए उनका वो लेवल टू लेवल असेंट करते थे. ही मे, दैट इज टू से, वर्क आउट बाई ए सॉर्ट ऑफ इंक्लूसिव प्रोसेस ऑफ सेल्फ एनलार्जमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन द इवोल्यूशन ऑफ द मेटीरियल इन टू द डिवाइन और स्पिरिचुअल मैन. ये उनका पथ था. This seems to have been the method of the most ancient sages, of which we get some glimpse in the Rig Veda and some of the Upanishads. खासकर तैतरीय उपनिषद में, जहां हम देखते हैं कि मनोमय कोश, प्राणमय कोश, सॉरी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, मनोमय कोश ब्रह्म है. अभी भी ये प्रोसेस का संक्षिप्त वर्जन होता है. लेकिन शिव बता रहे, ही मे ऑन द अदर हैंड एम स्ट्रेट एट द रियलाइजेशन ऑफ प्योर सेल्फ एग्जिस्टेंस ऑन द हाइएस्ट प्लेन ऑफ मेंटल बीइंग एंड फ्रॉम दैट सिक्योर बेसिस रियलाइज स्पिरिचुअली अंडर द कंडीशंस ऑफ हिज मेंटेलिटी द प्रोसेस बाय विच द सेल्फ एग्जिस्टेंस बिकम्स ऑल एग्जिस्टेंसेस. यानी आप पहले सेल्फ को रियलाइज करो, माइंड जहां तक रियलाइज कर सकता है. पहले आप देखो कि DNA का वो सूत्र ढूंढ लो. अब वो सूत्र ढूंढ के आप समझ रहे हो कि अच्छा, ये मूल DNA है लेकिन इसमें ये कमी है, इसमें ये अलग है, इसमें वो भिन्न है, जो आजकल हम लोग यूज भी करते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें वहीं से पैदा होती हैं. उसका लाभ क्या है? बट विदाउट दैट डिसेंट इन टू द सेल्फ डिवाइडेड इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस विच इज अ सर्कमस्टेंस ऑफ इवोल्यूशन इन द इग्नोरेंस thus identified with Sachidanand in the universal self-existence as the spiritualized mental being, he may then ascend beyond to the supramental plane of the pure spiritual existence. तो ये दो प्रोसेस हैं. एक जो वैदिक ऋषियों के समय उन्होंने किया, और तभी आप देखेंगे कि ऋषियों में कई ऐसी भी चीज़ें रहीं कि उन्होंने सेल्फ को रियलाइज किया लेकिन क्रोध काम नहीं कौन कर, क्योंकि वो इंटीग्रेट करना चाह रहे थे. उनकी अपनी प्रोसेस थी. एक एक देवताओं को, इतने सारे देवताओं को उन्होंने पूरे पैंथियन को डिस्कवर किया. नेचर सोल में जो 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 स्पिरिट्स हैं सब डिस्कवर किया. टू द क्रेडिट्स, वेरी इंटीग्रल योगा. लेकिन यहाँ शेरविंद कह रहे हैं, इट इज द लैटर मेथड द स्टेजेस ऑफ विच वी मे नाउ अटेम्प्ट टू ट्रेस फॉर द सीकर बाय द पाथ ऑफ नॉलेज. हम लोगों के लिए ये बता रहे, पहले तुम फाइंड द डिवाइन. इसीलिए हम हर जगह देखते हैं शेरविंद कहते हैं द वन थिंग नीडफुल, पहले डिवाइन को ढूंढो और मार्ग में जो कुछ आएगा आता रहेगा, जो भी जैसे जैसे तुम समझोगे वो एक अलग बात है. पर वैदिक ऋषियों का मेथड इंटीग्रल तो है लेकिन एक लंबा प्रोसेस है. यहां पर वो कह रहे हैं कि पहले तुम डिवाइन को ढूंढो, फिर तुम इंटीग्रेट करो. उनका अपना पथ ही रहा, जब उन्होंने अलीपुर जेल में जो अनुभव किया, रियलाइज किया, तो उसी हिसाब से वो हमें बता रहे हैं. व्हेन द साधक हैज फॉलोड द डिसिप्लिन ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द वेरियस आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द सेल्फ विद द ईगो, द माइंड, द लाइफ, द बॉडी, ही हैज अराइव्ड एट रियलाइजेशन बाय नॉलेज ऑफ ए प्योर स्टिल सेल्फ अवेयर एग्जिस्टेंस, वन अनडिवाइडेड पीसफुल inactive, undisturbed by the action of the world. The only relation that this self seems to have with the world is that of a disinterested witness. So, ye pehla step hai to discover the divine within, above, wherever, doesn't matter. To wo kaun sa status hai divine ka, jahan aap usme sthit ho jate ho. Sansar mein jo ho raha hai, usse aap prabhavit nahi ho rahe. Ye first step hai. तो कम से कम आपकी रूटिंग ठीक है. आप गिरे तो आपने वो जैसे होती है ना बंजी जंपिंग, रस्सी पकड़ी हुई किसी ने, ये फ्री फॉल नहीं है. आप जैसे ही गिरे आप वापस आ सकते हो. इवन धरती पे आपके पांव टच किए, यू कैन बाउंस बैक. उसका आपको प्रभाव नहीं होगा, हड्डी नहीं टूटेगी. निर्लिप्तता की वास्तव अवस्था वही है, क्योंकि आप रूटेड हो उसमें. यू कैन इमीडिएटली, माता जी इसको ऐसे बताती हैं कि बाहर में आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और घर में शांति है, तो तुम क्या करोगे, तूफान हो रहा है, तुम अंदर आओगे, वही करना चाहिए. लेकिन अगर तुमने द्वार कभी खोला ही नहीं है, इफ़ यू हैव नेवर ओपन द डोर, हाउ विल यू स्टेप इनसाइड. फर्स्ट ओपन द डोर. तो क्या है, एक बार वो हो गया तो आपको कभी भी कुछ आघात लगा, कोई समस्या हुई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके पास वो इमीडिएट रिकॉर्ड्स है. सो पहले रूटेड इन द डिवाइन सेल्फ, ये चीज श्री अरविंद बता रहे हैं. उसकी जो स्टेजेस हैं, पहली स्टेप विटनेस है, माने इसको स्टेपिंग बैक कहा है. सिंथेसिस योग में ही हमने पढ़ा था, कर्म में साक्षी भाव, द विटनेस पुरुषा, ये सब है इसी में. कर्म योग में भी आती है विटनेस पुरुष. कैसे होते हो, जब आपके अंदर ये कर्ता का भाव, सकाम काम, समता, इन सब के अभ्यास से आप धीरे धीरे एक सेपरेशन आ जाता है पुरुष में और प्रकृति में. ये बेसिक है. कहते हैं ना कि हायर सेकेंडरी नहीं, वो प्राइमरी लेवल की हो गई, तो सेपरेट करना मर्जी से आ गया. तो ये बेसिक है, ये अंत नहीं है. कई लोग दृष्टा पे समाप्त, लेकिन उससे तो आपको क्लू नहीं मिला दोनों के रिकंसाइल करने का. इफ दिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज पुश्ड फर्दर, वन बिकम्स अवेयर ऑफ ए सेल्फ इवन मोर रिमोट फ्रॉम वर्ल्ड एग्जिस्टेंस. ये बीच बीच में अनुभव हो सकता है और उसमें आप पूरी तरह, ये सारा संसार एक स्वप्न की तरह, एक छाया की तरह, एक सिनेमा की तरह आप देख रहे हो कि जा रहा है आ रहा है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है. तो और भी रिमोट हो गया, जहाँ इवन आप नहीं एग्जिस्ट करते हो, एक दृष्टा भी नहीं है, केवल वह है, दैट अलोन इज देयर. तो ये अनुभव से भी हम सब परिचित हैं अधिकतर. तो दैट अनोएबल टू द मेंटल कॉन्शियसनेस, तो इसको अनोएबल कहा गया क्योंकि वहां आप भी नहीं हो, ना सेल्फ है ना वर्ल्ड है, लेकिन कुछ है, वो एक अवस्था है. उस अवस्था के बारे में आप नहीं जान सकते. जैसे ही जानने के लिए आप माइंड एक्टिव करोगे, आप खोदोगे. आप देखिए ऐसा होता है ना, जब आप विड्रॉ कर रहे हो, मान लो आपने सिर के ऊपर आप ध्यान कर रहे हो माँ शिरबिंदु पे, एक टाइम आएगा जब आप पूरी तरह वहां पर अवस्थित है. अगर आपने जानने की चेष्टा की या कोई और चीज आई, अगर स्थित नहीं है, तो आप इमीडिएटली मेंटल कॉन्शियसनेस में आते ही यू लूज दैट स्टेट. फिर आप प्रयास करते हो नेक्स्ट लेवल, कोई थॉट ही आ गया मान लो स्पंदन विचारों का, तो आप उसको खो देते हो. फिर क्या करते हो, फिर से पकड़ते हो जब तक आप पूरी तरह उसमें स्थित नहीं हो जाते. अब ये अनोएबल को इट कैन इवन बी रियलाइज बाय द मेंटल बींग एज ए निहिल. तो आप उसको ये कह सकते हो सोल एग्जिस्टेंट या नॉन एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो है या नहीं है ये भी आप डिफाइन कर रहे हो. तो निहिल, ए नॉन एग्जिस्टेंट, ए वॉइड, नॉन एग्जिस्टेंस और वॉइड, बट ए वॉइड ऑफ ऑल दैट इज इन द वर्ल्ड, ए नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दैट इज इन द वर्ल्ड एंड येट द ओनली रियलिटी. अब इसके आगे आप पूरी तरह ट्रांसेंडेंस में जा सकते हो, ये एक मार्ग है. लेकिन इंटेग्रल योग में तो ये नहीं चलेगा. द इंटेग्रल योग ऑफ नॉलेज डिमांड्स इंस्टेड ए डिवाइन रिटर्न अपॉन वर्ल्ड एग्जिस्टेंस एंड इट्स फर्स्ट स्टेप मस्ट बी टू रियलाइज द सेल्फ एज द ऑल सर्वम ब्रह्म. तो भैया पहाड़ों में रिट्रीट ले लेना एक कोठरी में जा करके नहीं चलेगा क्योंकि आपको संसार में सर्वम ब्रह्म ये नेक्स्ट लेवल का खेल है. ठीक है आपको अगर रियलाइज करने के लिए बहुत आवश्यक है लेकिन अंततः आपको इसके बीच में और अगर इसके बीच में रह कर रियलाइज करते हो तो आसान हो जाता है क्योंकि आपको शुरू में कठिनाई होती है लेकिन बाद में इट बिकम वेरी इजी टू नेविगेट. नहीं तो आप जैसे ही आओगे पतन होगा तो एक टेंडेंसी होगी उसको फिर से पकड़ना मुश्किल होगा टू गो बैक. तो इसलिए इंटीग्रल योगा ऑफ नॉलेज डिमांड्स इंस्टेड ए डिवाइन रिटर्न सर्वम ब्रह्म फर्स्ट कंसेंट्रेटिंग ऑन द सेल्फ एग्जिस्टेंट वी हैव टू रियलाइज ऑल ऑफ विच द माइंड एंड सेंसेज आर अवेयर एज अ फिगर ऑफ थिंग्स एग्जिस्टिंग इन दिस प्योर सेल्फ दैट वी नाउ आर टू अवर ओन कॉन्शियसनेस. तो ये एक प्रोसेस है. श्री अरविंद और माता जी ने संसार में रहते हुए ये रियलाइज की हैं और जितने भी अगर हम उनके जीवन को देखें पढ़ें ये सब श्री अरविंद ने इवन एक्टिव रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में जब वो लिखना भी कर रहे थे मीटिंग्स भी कर रहे थे इन सब के बीच में उन्होंने रियलाइज किया. माता जी ने तो और भी ज़्यादा मतलब हर तरह की एक्टिविटीज़ में. तो यही प्रोसेस है लेकिन कंसंट्रेशन हमारा रहना चाहिए. इसको अन्य योगों में भी बताया गया है जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे कि एक जो महिला है वो बच्चों को लेकर के वो उनसे उन्होंने कंसंट्रेशन को बड़े सुंदर ढंग से डिफाइन किया कि वो महिला पानी भर के पानी की गगरी अपने सिर के ऊपर रखे है बच्चे को हाथ में पकड़ा है और बातें कर रही है. उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान बच्चे के ऊपर है कि ये थोड़ा भी कुछ वो ऐसे वो हेल्ड है बच्चा और देख रही है कि ये गिरे ना और बातें कर रही है लेकिन बच्चे की थोड़ी सी भी एक ट्विच होगी उसका उसको पता है वो कंसंट्रेट है आपको पता नहीं चल रहा है. और यही चीज़ सुखदेव की कहानी में है या नारद जी की कहानी में राजा जनक के दरबार में कि पूरे शहर वो चले जाते हैं लेकिन उनसे पूछते हैं कि तो कैसा लगा शहर. कहते हैं शहर तो मैंने देखे नहीं. क्यों नहीं देखा? मेरा ध्यान तो सिर के ऊपर रखे तसले पर था जिसमें पानी भरा था क्योंकि आपने कहा था कि एक बूंद पानी गिरेगा तो तेरा सिर काट देंगे मेरे सैनिक. तो वैसे हम संसार से जाते हैं लेकिन किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं. तो ये पहले हम लोगों को रियलाइज करना. अब उसका श्री अरविंद बहुत विस्तार से बताते हैं. कहते हैं लेकिन अगर हम केवल इस रियलाइजेशन पे चलते हैं तो फिर हमारे लिए एक समस्या आती है. इफ़ यू रेस्ट हियर देर आर ओनली टू पॉसिबल. अब इसमें आपको ये इल्यूजन लगने लगता है संसार ये एक स्टेज है ये फाइनल नहीं है ये बार बार. तो जब वो कह रहे थे कि ये संसार स्वप्न है ये एक स्टेज है जब आप ऐसा अनुभव करते हो लेकिन यदि आप इस स्टेज पर रुक जाते हो तो आप कभी रिकनसाइल नहीं कर पाते हो इस संसार को और ईश्वर को. और संसार की जो प्रॉब्लम है वो अनसॉल्व रहती है. बहुत सारे प्रश्न हैं जो उलझे रह जाते हैं. आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हो काट देते हो कि ये है ही नहीं. जब आप कहते हो इल्यूजन है तो आपने वास्तव में इस प्रश्न को ही निर्मूल कर दिया. मान लीजिए कोई टिपिकल इस तरह का वेदांतीन स्वामी आए जो केवल कह रहा है जिसने रियलाइज किया है वो ये अवस्था से गुजर सकता है कि उसके शरीर को निर्विकल्प समाधि में आप काटोगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा. ये बहुत रेयर चीज है पर ऐसा संभव है. सविकल्प में आप वापस आ जाओगे लेकिन निर्विकल्प समाधि में आप बिल्कुल अनटस्ट रहोगे. बहुत कम योगी ने जिन्होंने इस चीज को अनुभव किया होगा. श्री अरविंद ने तो सक्रिय अवस्था में ये समाधि अनुभव की है जागृत जिसमें उन्होंने वे चीजें जो शरीर को हार्म करती हैं हानि पहुंचाती हैं उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. तो ये लेकिन जब आप केवल कह रहे हो कि ये संसार इल्यूजन है इसी चीज के लिए गीता मना करती है कि नाबुद्धि भेदम. अब ठीक है अगर आप सच्चे हो तो आपको अगर मान लीजिए चोट पहुंची है और इलाज कराना है तो आपको फिर ना एनेस्थीसिया की जरूरत होनी चाहिए. श्री रमन महर्षि तो बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेट करा गए क्योंकि ये तो स्वप्न है. आप स्वप्न से अलग हो. आपको सीधा उस सेल्फ की समाधि में चले जाना चाहिए और कहना चाहिए कि और एक कदम आगे इलाज भी नहीं कराना चाहिए. भला स्वप्न में स्वप्न के दोष को कौन ठीक करना चाहता है? और उसे और एक कदम जाए तो मुक्ति की भी कोई बात नहीं है क्योंकि जब सेल्फ ही नहीं है जो एक भ्रम है या स्वप्न है तो आप किसकी मुक्ति की बात कर रहे हो? तो ये बहुत सारे उलझे हुए प्रश्न हैं जो ट्रेडिशनल वेदांत बाईपास कर देता है. लेकिन वो पकड़ा जाता है. पकड़ा कहाँ जाता है कि वास्तव में ये इल्यूजन है, तो आप किसको बताने जा रहे हो. श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है ना, गॉड लाफ्ड थ्राइज एट शंकरा. आप सारे संसार में जा रहे हो ये बताने कि संसार मिथ्या है. ये पैराडॉक्स देखिए, आप किसको बताने जा रहे हो कि ये मिथ्या है, मिथ्या को बताने जा रहे हो कि ये मिथ्या है. और कौन बताने जा रहा है, जो बताने जा रहा है वो भी मिथ्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना बाकी सब जो है वो मिथ्या हो और मैं सत्य हूं. आपने तो पूरे संसार को जब मिथ्या कर दिया तो फिर आप भी मिथ्या हो. तो मिथ्या मिथ्या को यह बताने जा रहा है कि यह मिथ्या है. अपने सब कुछ स्पीच ये सब कुछ मिथ्या हो गया. तो ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है और इसमें ये सुलझ जाता है. तो जो योगी क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं अपने कर्मों को. उनकी अपनी थ्योरी है कि ये तो बंधन है, पर सच्ची फ्रीडम तो ये कि बंधन में भी फ्रीडम है, जिसको निर्लिप्तता कहा गया. तो अब इसके आगे और भी हैं कई सारी ऐसी अवस्थाएं. अब यहाँ श्री अरविंद बताते हैं कि लेकिन एक्शन कंटिन्यू करता है. सर्टेनली बिहाइंड ऑल इंटेलिजेंट एक्शन देयर मस्ट बी एन इंटेलिजेंट विल. एक्शन कंटिन्यू करता है तो कहीं ना कहीं तो विल और इंटेलिजेंस है. आपने कह दिया मैकेनिकल है, लेकिन है तो इंटेलिजेंस और विल. कैसे कर रही है, ऐसे तो नहीं है कि आपका हाथ उठा तो वो ग्लास को ही पकड़ रहा है ना. ऐसा तो नहीं है कि आप रैंडम मूवमेंट कर रहे हो, पर्पसफुल है तो उसमें इंटेलिजेंस भी है. और यदि हाथ उठाए तो विल भी है, कहीं ना कहीं तो है. और ये अगर पुरुष की ही इंटेलिजेंस है तो पुरुष भाव में तो आप चले गए, विटनेस हो गए, तो ये कहां से आ रही है. बट इट नीड नॉट बी द इंटेलिजेंस और विल ऑफ द कॉन्शियस माइंड इन द एक्टर. इन द साइकोलॉजिकल फेनोमिना जिसकी श्री अरविंद बात करते हैं कि हिप्नोसिस की बात करते हैं, जहां व्यक्ति कार्य करता है किसी और के विल और इंटेलिजेंस के अनुसार. इट इज एन इंफ्लुएंस और एक्चुएशन बाई अदर बींग्स और द इमरजेंस ऑफ ए सबकॉन्शियस सबडिमिनल माइंड और ए मिक्सड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज एजेंसी. बट इन दिस योगिक स्टेटस ऑफ एक्शन बाई द मियर ऑर्गन्स इट इज द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड विल ऑफ नेचर इट सेल्फ वर्किंग आउट फ्रॉम सेंटर्स सुपर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एज इट एक्ट्स इन द मैकेनिकली पर्पसफुल एनर्जीज ऑफ प्लांट लाइफ और द इनएनिमेट मटीरियल फॉर्म बट हियर विद ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट हु इज द कॉन्शियस विटनेस ऑफ द एक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. तो जो कर्म चल रहे हैं वो मैकेनिकल चल रहे हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंटली चल रहे हैं. ठीक समय पर सारे नित्य कर्म भी जो होते हैं रोज के डेली एक्शंस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यूनिवर्सल नेचर जो पशु में है वही आपके अंदर भी एक्ट कर रहा है. तो देर इज अ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड विल विच इज ऑपरेटिंग. अब श्री अरविंद कहते हैं कि केवल वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस और विल नहीं है, वो माइंड के ऊपर की एक विल और इंटेलिजेंस है जो एक्ट करती है. कैसे? इट इज अ रिमार्केबल फैक्ट दैट द स्पीच राइटिंग एंड इंटेलिजेंट एक्शंस ऑफ सच ए स्टेट मे कन्वे अ परफेक्ट फोर्स ऑफ थॉट ल्यूमिनस फॉल्टलेस logical, inspired, perfectly adapting means to ends far beyond what the man himself could have done in his old normal poise of mind and will and capacity, yet all the time he himself perceives but does not conceive the thought that comes to him, observes in its works but does not appropriate or use the will that acts through him, witnesses but does not claim as his own the powers which play upon the world through him as through a passive channel. अब compare कर रहे हैं कि एक है जब उसकी साधारण mental activity है तो वो साधारण व्यक्ति जैसा है, लेकिन जब वो कोई कुछ लिख रहा है या बोल रहा है पता नहीं कहाँ से कोई अति चेतन सत्य उसके वाणी को उसके प्राण ऊर्जा को शरीर को सब कुछ involve है ना उसमें. बोलने में आपकी स्पीच अपरेटस इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, ब्रेन इन्वॉल्व है, हाथ के जेस्चर पोस्चर सब इन्वॉल्व है. तो ये सब चीज़ को व्यवस्थित रूप से एकदम लॉजिकली, मतलब अजीब, वो कैसे वो व्यक्ति वो लॉजिकली प्लान नहीं कर रहा, उसने सोचा नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे लॉजिकली प्रेजेंट करूँगा, लेकिन वो अपने आप सुनने वाले के लिए वो क्लियर होता जा रहा है। क्यों क्लियर हो रहा है? क्योंकि वो लॉजिकल लग रहा है, पर वो लॉजिकली सोच के नहीं की गई है एक्टिविटी। और वही व्यक्ति जब स्वयं उसको देखता है तो वो जानता है कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये तो किसी और ने मेरा उपयोग किया है। वो कौन है? मन के ऊपर की चेतना, क्योंकि वो अपनी माइंड की चेतना से वो नहीं कर सकता है। और जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में आता है उस चेतना के, तो वो ये चीज कर सकता है। तो यहां पर सक्रिय कहां से आ रहा है? ल्यूमिनस सोर्स से आ रहा है, परफेक्ट है, फॉल्टलेस है। इसीलिए माता जी ने कहा था कि श्री अरविंद की राइटिंग्स में कॉमा भी मत बदलना। कारण क्या है कि तुम मन की चेतना से देख रहे हो उसमें क्या दोष है क्या नहीं है। यहां तक माने कहा, जब किसी ने कहा कि बट मदर शोबिंदो डिड नॉट रिवाइज द बुक ऑफ डेथ, माने कहा हाउ डू यू नो दैट ही डिड नॉट इंटेंड टू लीव इट लाइक दैट। अति चेतना के काम को हम माइंड नहीं जज कर सकता है। क्यों, कैसे, कहा? मन की भूमि प्रयास करती है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, और उसके चलते इसके ऐसे इतने परिणाम होते हैं उसकी तो क्या ही बात करें। तो यहां पर श्री अरविंद बता रहे हैं, बट दिस फिनोमिना इज नॉट रियली एबनॉर्मल और कॉन्ट्रेरी टू द जनरल लॉ ऑफ थिंग्स। अब वो कह रहे हैं पूरी सृष्टि में तो यही हो रहा है, एक इंटेलिजेंट विल काम कर रही है। फॉर डू वी नॉट सी ए परफेक्ट वर्किंग ऑफ द सीक्रेट यूनिवर्सल विल एंड इंटेलिजेंस इन द एपेरेंटली ब्रूट एक्शन ऑफ मेटीरियल नेचर। पौधा, आज बात हो रही थी किसी ने कहा कि मुझे ऐसे योग वगैरह साधना करने की तो ऐसे इच्छा नहीं होती प्रवृत्ति, लेकिन मुझे पांडिचेरी आके रहने का मन करता है, तो ये क्या है? तो मैंने कहा ये साधना की तैयारी चल रही है। कैसे? कहा जब बीज अंदर दबा होता है तो एक है तो सुप्त है, फिर वो खुलता है, फिर क्या करता है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आप पूछोगे कि ऊपर की तरफ क्यों आ रहे हो? बोले मालूम नहीं, प्रवृत्ति हो रही है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो क्या कहता है? ओ ये सूर्य के कारण मैं आ रहा था, सूर्य था जो मुझे खींच रहा था, क्योंकि मेरे अंदर भी सूर्य है और मेरे अंदर का सूर्य द रियल आइडिया सुप्रामेंटल जो भी आप कहें, वो उस सूर्य के प्रति आकर्षित हो रहा है, क्योंकि दिस इज द लॉ। अब देखिए वो बाद में रियलाइज करता है, लेकिन शुरू में केवल वो एक अननोन आकर्षण। तो कई लोग यहां ऐसे आते हैं, तो मैंने कहा अधिकांश लोग ऐसे ही आते हैं, उनको पता नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जस्ट तुम डिस्कार्ड कर दो, नहीं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई चीज उनको खींच रही है। ये प्रिपरेशन है किस बात का? मिट्टी से बाहर निकलने का। कौन जाने वो कब निकल जाएंगे, आज नहीं तो कल या अगले जन्म में। भगवान तो बाहर बहाना बना देते हैं ना, कि बाहर से लगता है इस कारण उस कारण, लेकिन वास्तव में एक सीक्रेट इंटेलिजेंस काम कर रही है। तो यहां पर उसका बहुत सुंदर उदाहरण है। एंड इट इज प्रिसाइडली दिस यूनिवर्सल विल एंड इंटेलिजेंस विच दस एक्ट थ्रू द काम इनडिफरेंट एंड इनवर्डली साइलेंट योगिन हु ऑफर्स नो ऑब्स्टेकल ऑफ लिमिटेड एंड इग्नोरेंट पर्सनल विल एंड इंटेलिजेंस टू इट्स ऑपरेशंस। तो वो कह रहे हैं कि यही चीज है जो उस योगिन में, लेकिन अब वो सचेत है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं कर रहा है, वो भी उस जड़ की तरह एक हायर लेवल पर स्टिल हो गया है, साइलेंट है, और ये सब कुछ फ्लो कर रहा है उसके थ्रू। इसी चीज को गीता में कहा गया है कि द योगिन एज द गीता सेज इवन इन एक्टिंग डज नो एक्शंस फॉर इट इज नॉट ही बट यूनिवर्सल नेचर डायरेक्टेड बाय द लॉर्ड ऑफ नेचर विजिट एट वर्क। ही इज नॉट बाउंड बाय हिज वर्क्स नॉर डू दे लीव एनी अदर इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज इन हिज माइंड nor cling to or leave any mark on his soul, they vanish and are dissolved. Nalipyate na karma lipyate nara, isko ish upanishad mein wo nirlipt kal baat ho rahi thi, kal parson nirlipt bhav hota hai uske andar, kyunki wo usme ego se involve hi nahi tha, wo ek action aaya aur kabhi kabhi wo prachand action ho sakta hai। शिव जी तो महाविनाश करके दो क्षण में जैसे सुनामी शांत होकर समुद्र बैठ गया। आप बोलो भैया क्यों किया? वो शांत था, वो नॉर्मल गति में चल रहा है। आप यहां अपनी जीवन को समेटने में लगे हो, शिव जी ने तांडव किया, कहां ज्वालामुखी फटा, कहां ओले बरसे, क्या हुआ? थोड़ी देर बाद आप जाओगे ढूंढने तो शिव जी तो ट्रांस में, शिव जी आपने क्या कर डाला? मैंने कुछ नहीं किया। आप देखिए ये अवस्था होती है उस योगिन की, उस पर कोई पाप दोष नहीं लगता, इसलिए वो कहते हैं ना सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच। तो इसकी बात होती है। अब बताते हैं कि अब दो अवस्थाएं हो गई। एक में इन वन द पैसिव ब्राह्मण स्टैंड्स अलूफ फ्रॉम द एक्टिव एंड डज नॉट शेयर इन इट्स कॉन्शियसनेस। इन द अदर द एक्टिव ब्राह्मण स्टैंड्स अलूफ फ्रॉम द पैसिव एंड डज नॉट शेयर इन इट्स कॉन्शियसनेस नॉर होल्ली पजेस इट्स ओन। तो अब फिर ये योगिन अब दो अवस्थाओं में जाएगा। जब वो एक्टिव स्टेट में है तो वो अंदर की वो साइलेंट सेल्फ है, वो बैकग्राउंड में है, पर वो जानता है कि ये मैं नहीं हूं, ये डिवाइन मदर है, और डिवाइन मदर की उपस्थिति आनंद से प्रकट होती है, और डिवाइन पुरुष जो ईश्वर है उसकी उपस्थिति शांति से। तो या तो एकदम शांत बैठा हुआ, और फिर जब एक्टिविटी हुई तो वो डिवाइन मदर की उसमें आनंद, ये दो अवस्थाओं में अल्टरनेट करता है। लेकिन इसमें वो बताते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी इसकी बात की, कि इसमें एक समस्या होती है कि जब वो एक्टिविटी में है तो चूंकि एक्टिविटी में वो कभी भी हायर स्टेटस से माइंड की ओर आ सकता है। मान लीजिए किसी ने अचानक कुछ कह दिया, आपका ध्यान जो एकदम अनब्रोकन कंटिन्यूटी में था, अगर आपके अंदर वो पॉइज नहीं है जिसमें आप स्थित हैं तो आप डिस्टर्ब्ड हो जाओगे। जैसे ही डिस्टर्ब्ड हुए, क्षोभ हुआ, तो आप माइंड के लेवल पे आ जाओगे, फिर आप रिकवर कर लोगे। इट डिपेंड्स किस स्टेज तक व्यक्ति डेवलप्ड है, लेकिन इन दोनों के बीच अभी पूरा समन्वय नहीं हुआ है। और दूसरी अवस्था है जहां ये जब बिल्कुल पक्का समन्वय है तो उस एक्टिविटी में कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप उसी शांति में रहोगे, चाहे बाहर धूम धड़ाका हो रहा हो, कोई सुन रहा हो नहीं सुन रहा हो, सब इधर उधर, तो आप उससे किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि आपकी अंदर की पॉइज शांत है। आपने उस निष्क्रिय और सक्रिय दोनों स्टेटस, तो निष्क्रिय में क्या है, कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, आप अनडिस्टर्ब्ड हो, एलूफ हो हर चीज से, तो कितना भी शोर हो रहा हो, आप हो सकता है श्रोता शोर से डिस्टर्ब हो जाए, स्वाभाविक है, अनलेस दे आर ऑल्सो रूटेड इनसाइड, लेकिन आप अनडिस्टर्ब्ड हो, आपका वही चल रहा है, फ्लो कर रहा है, क्योंकि आप दोनों ही चीजें आपके अंदर अब कंबाइन हो गई हैं। तो ये यहां पे इस चैप्टर में इसका सार है। अंत में श्री अरविंद बताते हैं, ही लिव्स इन द, अब तो कहते हैं कि इसका मतलब है अगर वो डिस्टर्ब्ड हो रहा है, यानी कि वो अभी भी एक्टिव ब्रह्म की बाहर बाहर की अवस्थाओं में है, उसके और गहराई में नहीं उतरा है। स्टिल देयर इज द लाइकलीहुड ऑफ ए पार्शियल सुपरफिशियल एंड टेम्पररी रिलैप्स इन टू द ओल्ड मेंटल मूवमेंट, जिसके भी बात हुई, when he attempts again to ally himself to the activity of the world. To prevent the relapse or to cure it when it arrives, he has to hold fast to the truth of Satchidanand and extend his realizations of the infinite one into the movement of the infinite multiplicity. इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से ले सकते हैं कि आपके अंदर कोई चीज पूरी फ्लो करके प्रकट हुई और आनंद से आपको पता चल गया कि ये इट इज द डिवाइन मदर्स ग्रेस। हो सकता है कि कोई आपको ये कहे कि अरे ये क्या है, आपने ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया, वो आपके अंदर अगर शोभ होता है तो आप मेंटल एक्टिविटी में आ गए, ईगो सेल्फ में आ गए। और अगर आप इसको ब्रह्म के विस्तार से देखेंगे तो आपकी जो क्रिया प्रतिक्रिया बिल्कुल भिन्न होगी। तो यहां इसके दो स्टेजेस हैं, एक जिसमें आप सक्रिय ब्रह्म, द डिवाइन मदर इज वर्किंग एज ए चैनल, बट देर इज ए टेंडेंसी टू फॉल बैक इन टू द माइंड। तो वहां पर क्या करना है, क्योर कैसे करना है, याद कराना अपने आप को, फिर से स्मरण कराना है, ऑल दिस इज द ब्रह्मन, तो आप वापस उस इम्यूटेबल पीस में आ जाएंगे। अडेप्ट करने में समय लगता है चेतना को, पर उस दिशा में यहाँ पर उसका पूरा बता रहे हैं उपाय। क्योर, डॉक्टर के पास बोलेंगे मेरी इंस्पिरेशन में ऐसे प्रॉब्लम होती है इसका कोई इलाज है, तो कहेगा पागल हो, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, साइकेट्रिस्ट तो कुछ लेबल कर देगा आपको। लेकिन ये एक एक्चुअल योग की अवस्था है। प्रारंभ में ये इतनी जब एक्टिव होती है तो आप ना जाने कितना कुछ कर सकते हो जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पेजेस आफ्टर पेजेस, राइटिंग, स्पीकिंग, या कोई अगर वार की एक्टिविटी है वो जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी, या कोई बाहरी कर्म है, सब में ऑफ कोर्स मेंटल एक्टिविटी में बहुत सरलता से देखी जा सकती है। यही चीज चलती हुई अंत में the realization of a soul reality suffering the imposition of names and form will give place to that of eternal being throwing itself out into infinite becoming। तो पहली जो बेसिक स्टेप है जिसमें आप क्या करें, आप तो अंदर मुक्त हैं लेकिन आसपास ये संसार है वो तो रुकता नहीं है, तो जब तक आप संसार में हैं एक पार्ट आपका कहीं ना कहीं उससे जुड़ा रहता है, सफरिंग नेम एंड फॉर्म। और दूसरी जो अवस्था है उसमें केवल आप वही एक सत्य है जो अपने को ये नाना प्रकार के नाम रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है। ये दो बिल्कुल डिफरेंट स्टेजेस हैं। ऑल एग्जिस्टेंसेस विल बी टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द योगिन सोल फॉर्म्स एंड नॉट मियरली आइडिया फॉर्म्स ऑफ द सेल्फ ऑफ हिमसेल्फ वन विद हिम कंटेन्ड इन हिज यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। All the soul life, mental, vital, bodily existence of all that exists will be to him one indivisible movement and activity of the being who is the same forever। आपके अंदर जो घटित होगा वो दूसरे के अंदर ट्रांसलेट होगा, और दूसरे के अंदर जो हो रहा है वो आपके अंदर ही बाद में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में विस्तार से बतलाएंगे, और उस योगिन का एक्शन फिर इस प्रकार का होगा। और उसके अंदर ये जो भिन्न है ये उसकी जगह आप यू स्टार्ट सीइंग द वन सेल्फ। अब देखिए जो सारी त्याग सैक्रिफाइस इससे निकलते हैं, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने ही सच्चे स्व के लिए कर रहे हो। तो ये जो भारतवर्ष की जो मूल संस्कृति में त्याग और तपस्या आया ये वहां से आया, ये चीज नहीं है बाकी जगहों पर। भारत की पहचान ही यही है। त्याग हम लोगों के लिए बहुत नेचुरल आता है, हम लोगों ने जब ऑफ कोर्स उसका मीनिंग बदल जाता है, पहले आप केवल अपने स्वजनों के लिए त्याग कर रहे हो, ईगो के लिए त्याग कर रहे हो, बड़े ईगो को देख करके परिवार के लिए त्याग कर रहे हो, लेकिन फिर जब आप डिवाइन में रहने लगते हो तो आप डिवाइन के लिए और सबके अंदर वो डिवाइन रूप से देख करके आप जो भी करना है वो करते हो प्रेरणा स्वरूप। The self will be realized as the all in its double aspect of immutable status and mutable activity, and it is this that will be seen as the comprehensive truth of our existence। ऐसे व्यक्ति से अगर आप पूछोगे, मान लीजिए आज कुछ हुआ, कोई बात हुई, कुछ कहा, वो लिप्त नहीं है उससे, उसमें एक प्रेरणा स्वरूप बात हुई, दूसरे व्यक्ति के दिमाग में वो बैठ गई। अब अगर वो ऐसे व्यक्ति से बात करे कि भाई आपने क्यों, तो वो क्या जवाब देगा? उसने कोई चीज लॉजिकली सोच के किसी विशेष प्रयोजन से मोटिव से नहीं की है, और वो उससे बाहर आ गया है वो कंप्लीटली, क्योंकि वो जो हमने पढ़ा ना कि वो उस पर कोई दोष ही नहीं लगता है। तो इसलिए जैसे जैसे आप इस योग यात्रा में आगे बढ़ते जाते हो उतना आपको लोग कम समझना प्रारंभ करेंगे, और यदि आपको कोई नहीं समझ पा रहा है मतलब आप अच्छे योगी बन गए हो क्योंकि आपकी जो इनर स्टेट है वो कोरेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। कोई ये सोच सकता है कि भाई कल तो ये व्यक्ति ऐसा था, इसको बाद में गीता में शेयरविंद लाइव डिवाइन में बताते हैं, इट्स ए इम्पर्सनल पर्सनैलिटी, आप फिक्स ही नहीं कर सकते हो कि वो ऐसा है या वैसा है, यह होगा या वो होगा, उस समय क्या होगा, वो प्रेरणा के स्वरूप होगा। उसको कहा गया है नॉस्टिक बीइंग की पर्सनालिटी को इम्पर्सनल यूनिवर्सैलिटी, उसमें यूनिवर्स की जितनी भी शक्तियां हैं वो कब सक्रिय हो सकती हैं, और लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से उनसे ना प्रभावित होता है, ना उसकी कृत्य के पीछे कोई व्यक्तिगत ईगो या डिजायर का समावेश है। तो स्वाभाविक है कि इसीलिए श्री अरविंद ने आश्रम में कहा है डोंट जज एनीवन बिकॉज पता नहीं किसके अंदर क्या चल रहा है। जय माँ।